एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
एकत्र फाउंडेशन की इस प्रस्तुति में आप सभी का स्वागत है। आज ग्रंथसार में हम बात कर रहे हैं एक ऐसे उपन्यास की जिसने साहित्य जगत में कह सकते हैं तहलका मचा दिया था।
हाँ बिल्कुल, गुस्ताव फ्लोबेर का मशहूर उपन्यास मादाम बोवेरी।
जी, गुस्ताव फ्लोबेर जो 19वीं सदी के फ्रांस के बहुत बड़े लेखक थे, 1821 से 1880 तक। उन्हें अक्सर मॉडर्न नॉवल का प्रणेता माना जाता है।
सही कहा, और उनकी लेखनी में एक अजीब सी शिद्दत थी। वो हमेशा बिल्कुल सही शब्द की तलाश में रहते थे, ले मो जूस्ट जैसा वो कहते थे।
और यही चीज मादाम बोवरी को इतनी ताकत देती है। ये कहानी है एमा बोवरी की, एक ऐसी औरत जो सपनों में जीती है।
हाँ, रोमानी उपन्यासों वाली जिंदगी चाहती है वो, बिल्कुल, लेकिन असलियत की दुनिया बहुत अलग है, बहुत कठोर।
और ये सिर्फ उसकी कहानी नहीं है,
नहीं।
ये उस दौर के फ्रांसीसी समाज का भी आईना है। वो जो मध्यवर्गीय बुर्जुआ समाज था,
उसकी खोखली बातें, उसके दोहरे मापदंड, और कैसे लोग सपनों के पीछे भागते भागते तबाह हो जाते हैं।
ये सब कुछ है इसमें।
और फ्लॉबेर यथार्थवाद मतलब रियलिज्म के बड़े नाम थे। उनका मानना था कि लेखक को बस दिखाना चाहिए जैसी चीजें हैं, कोई उपदेश नहीं, कोई अपनी तरफ से जोड़ तोड़ नहीं।
वो कहते थे लेखक को ईश्वर की तरह होना चाहिए, हर जगह मौजूद पर अदृश्य।
बिल्कुल, और इसके लिए उन्होंने खास तकनीक इस्तेमाल की, फ्री इनडायरेक्ट डिस्कोर्स, मुक्त अप्रत्यक्ष कथन।
हाँ, ये समझना थोड़ा जरूरी है। इसमें होता क्या है कि कहानी सुनाते सुनाते लेखक अचानक जैसे किरदार के दिमाग में चला जाता है
और उसी की तरह सोचने लगता है, उसी की भाषा में, बिना ये बताए कि एमा ने ऐसा सोचा।
जैसे मान लीजिए कहानी में लिखा हो, ओह कितनी बोरियत थी यहाँ, ये असल में एमा की फीलिंग है, पर लेखक उसे अपनी आवाज में कह रहा है।
इसे हम किरदार के बहुत करीब आ जाते हैं, उसकी अंदरूनी दुनिया को महसूस कर पाते हैं।
और जब ये किताब छपी 1856-57 में, तब तो बड़ा बवाल हुआ था।
हाँ, फ्लोबर पर मुकदमा भी चला, नैतिकता के उल्लंघन का आरोप लगा।
इसी मुकदमे ने किताब को एक तरह से बदनाम भी किया और मशहूर भी कर दिया।
और आज इसे पहला सच्चा आधुनिक उपन्यास मानते हैं। क्यों? क्योंकि इसका विषय, इसकी स्टाइल, किरदारों की गहराई
और खासकर वो छोटे शहरों की बोरियत और रोमानी सपनों पर जो चोट की है फ्लॉबेर ने, वो कमाल है।
तो चलें एमा बोवरी की दुनिया में।
हाँ जरूर। कहानी शुरू होती है एमा के बचपन से। वो कॉन्वेंट में पढ़ी है और वहां वो खूब रोमानी उपन्यास पढ़ती है।
और वहीं से उसके मन में वो सपनों की दुनिया बस जाती है। बड़ा प्यार, शानदार पार्टियां, जुनून भरी जिंदगी।
उसे लगता है कि शादी उसकी ये सारी हसरतें पूरी कर देगी।
फिर उसकी शादी होती है चार्ल्स बोवरी से।
चार्ल्स बोवरी एक डॉक्टर, भला आदमी है, सीधा साधा,
लेकिन बिल्कुल औसत, मतलब उसमें कोई खास बात नहीं, एमा के सपनों जैसा तो बिल्कुल नहीं।
चार्ल्स के लिए एमा सब कुछ है। वो उसे बहुत प्यार करता है, लगभग पूछता है उसे।
पर एमा, एमा की आत्मा तो कुछ और ही खोज रही है। शादी के बाद वो लोग टॉयस नाम के छोटे से कस्बे में रहने लगते हैं।
और वहीं एमा को असलियत का एहसास होता है। पति की साधारण आदतें, रोज की वही बोरियत,
घुटन होने लगती है उसे। ये वो जिंदगी नहीं थी जो उसने सोची थी।
और यहीं से उपन्यास का असली संघर्ष उभरता है ना?
हाँ, एमा की कल्पना जो बहुत ऊंची उड़ान भरती है, और उसकी जिंदगी की हकीकत जो बिल्कुल बेरंग है, इनके बीच की खाई।
उसे लगता है कि शब्द उसे धोखा दे रहे हैं। खुशी, जुनून, प्यार, ये सब किताबों में तो है, पर असल जिंदगी में कहाँ?
बिल्कुल, और फिर एक घटना होती है जो इस एहसास को और गहरा कर देती है।
वो वॉबीसाड़ की पार्टी।
हाँ, पास के एक जमींदार के महल में एक शानदार पार्टी होती है। वहां एमा को अपनी सपनों की दुनिया की एक झलक मिलती है,
रेशम, चमक दमक, पेरिस का अंदाज।
और वहां से वापस अपनी छोटी सी नीरस दुनिया में लौटना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। वो डिप्रेशन में जाने लगती है।
तब चाल सोचता है कि शायद जगह बदलने से कुछ फर्क पड़े। वो एमा की सेहत का हवाला देकर योनविल ला अबे नाम की एक दूसरी छोटे शहर जाने का फैसला करता है।
उस वक्त एमा गर्भवती भी होती है, तो एक उम्मीद सी बनती है कि शायद नई जगह कुछ बेहतर हो।
लेकिन क्या योनविल बेहतर साबित होता है?
नहीं, योनविल भी वैसा ही निकलता है। वहां बेटी बर्था पैदा होती है, पर एमा में माँ वाली कोई भावना नहीं जगती। वो अपनी बेटी से भी दूरी बनाए रखती है।
और योनविल में उसकी मुलाकात कुछ नए किरदारों से होती है।
हाँ, दो अहम किरदार, एक है महाशय होमे,
फार्मासिस्ट, दवा बेचने वाला,
हाँ, और बड़ा बातूनी, हर बात में अपनी जानकारी बघारने वाला। वो उस वक्त के पढ़े लिखे मगर अंदर से खोखले मध्य वर्ग का प्रतीक है, आत्मसंतुष्ट।
और दूसरा?
दूसरा है महाशय लेयूर, चालाक व्यापारी और सूदखोर। वो लोगों की कमजोरियों का फायदा उठाना खूब जानता है।
ये दोनों किरदार फ्लोबेर की समाज पर टिप्पणी है, होमे का दिखावापन और लेयूर का लालच।
हाँ, ये उसी समाज का हिस्सा है जिससे एमा भागना चाहती है पर भाग नहीं पाती, बल्कि फंसती जाती है।
तो फिर वो अपना खालीपन कैसे भरती है?
पहले तो चीजों से, महंगे कपड़े खरीदना, घर सजाना, उसे लगता है शायद इससे खुशी मिले।
और लेयूर इसमें उसकी मदद करता है?
उधार देकर?
बिल्कुल, लेयूर उसे धीरे धीरे अपने जाल में फंसाता है, उधार पर सामान देता है, फिर कर्ज देता है।
और फिर चीजों से मन भर जाता है
तो वो प्यार में रोमांच ढूंढती है। पहले उसकी जिंदगी में आता है लियोन ड्यूपुई, एक नौजवान क्लर्क।
अच्छा, दोनों में एक तरह का भावनात्मक रिश्ता बनता है। दोनों को कला साहित्य पसंद है, दोनों को यौन विल की जिंदगी उबाऊ लगती है।
लेकिन ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ता।
नहीं, लियोन शुरू में थोड़ा डरपोक किस्म का है। वो अपनी भावनाओं को जाहिर नहीं कर पाता और फिर पढ़ाई के लिए पेरिस चला जाता है। एमा फिर अकेली और निराश हो जाती है।
तो पहला प्यार अधूरा,
फिर आता है रुडोल्फ बुलांगे,
अमीर जमींदार, अनुभवी।
हाँ, और वो एमा को देखते ही समझ जाता है कि ये आसानी से उसके जाल में आ जाएगी। उसके लिए ये बस एक टाइम पास है, अपनी बोरियत दूर करने का जरिया।
और वो कृषि मेले वाला सीन, फ्लोबेर का व्यंग्य कमाल का है वहां।
हाँ, एक तरफ जानवरों को इनाम दिए जा रहे हैं और दूसरी तरफ खिड़की में रुडोल्फ एमा से प्रेम की बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। समाज के दिखावे पर क्या जबरदस्त कटाक्ष है।
और एमा, उसे क्या लगता है?
एमा को लगता है कि आखिरकार उसे वो सच्चा भावुक प्यार मिल गया जिसके वो सपने देखती थी।
वो इस रिश्ते में पूरी तरह डूब जाती है,
पूरी तरह लापरवाह हो जाती है, छुप छुप कर रुडोल्फ से मिलती है, उस पर पैसे लुटाती है, ल्यूर से और कर्ज लेती है।
वो उसके साथ भाग जाने का भी सोचती है।
हाँ, वो रुडोल्फ पर दबाव डालती है कि वो उसे लेकर भाग जाए। रुडोल्फ पहले तो हाँ कर देता है, लेकिन
वो सीरियस नहीं था।
बिल्कुल नहीं। जब उसे लगता है कि एमा का प्यार तो बहुत ज्यादा गहरा और जुनून वाला है तो वो घबरा जाता है। उसे अपनी आजादी प्यारी है
और वो उसे छोड़ देता है।
हाँ, भागने से ठीक पहले वो एक बेरुखी भरी चिट्ठी लिखकर रिश्ता तोड़ देता है। और चिट्ठी भी कैसे भेजता है? खुबानी की टोकरी में छुपाकर।
ये तो बहुत ही बेरहमी है। एमा पर क्या असर होता है इसका?
वो पूरी तरह टूट जाती है, बीमार पड़ जाती है, महीनों बिस्तर पर रहती है। उसे ब्रेन फीवर हो जाता है, ऐसा लिखा है।
मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से?
हाँ, ठीक होने के बाद वो कुछ समय के लिए धर्म की तरफ मुड़ती है, लेकिन वो भी थोड़े समय के लिए ही, ज्यादा नाटकीय ढंग से।
और इसी दौरान वो चार्ल्स वाली घटना होती है, ऑपरेशन वाली।
हाँ, महाशय होमे के बहकावे में आकर चार्ल्स अस्तबल के एक लड़के हिप्पोलिटे के मुड़े हुए पैर का ऑपरेशन करने को तैयार हो जाता
है। उसे लगता है इससे उसकी इज्जत बढ़ेगी, नाम होगा।
पर ऑपरेशन फेल हो जाता है, बहुत बुरी तरह। लड़के के पैर में गैंग्रीन हो जाता है और पैर काटना पड़ता है।
चार्ल्स की बड़ी बेइज्जती होती है
और एमा के मन में अपने पति के लिए जो थोड़ी बहुत इज्जत बची थी वो भी खत्म हो जाती है। उसे लगता है चार्ल्स हर मोर्चे पर नाकाम है।
फ्लोबेर यहां भी सच्चाई दिखाने से नहीं चूकते। ऑपरेशन की विफलता को बहुत बारीकी से, बल्कि थोड़ी विभत्सता से दिखाते हैं।
हाँ, वो चार्ल्स का मजाक नहीं उड़ाते, बस हालात ऐसे दिखाते हैं कि पाठक खुद समझ जाए कि चार्ल्स कितना औसत है।
चार्ल्स की इस नाकामी के बाद एमा और ज्यादा बेचैन हो जाती होगी।
बिल्कुल। तब चार्ल्स उसे बहलाने के लिए रुओन शहर ले जाता है, ओपरा दिखाने।
और वहां?
वहां उसकी मुलाकात फिर से लियोन से हो जाती है।
अच्छा, वही लियोन?
हाँ।
अब वो बदल चुका है।
हाँ, पेरिस में रहकर वो ज्यादा आत्मविश्वासी दुनियादार बन गया है। वो अब एमा का पीछा करने लगता है।
और एमा?
एमा शुरू में थोड़ी हिचकती है, लेकिन फिर वो भी लियोन के साथ एक नए गुप्त रिश्ते में पड़ जाती है।
वो पियानो क्लास का बहाना करती है।
हाँ, हर हफ्ते रुओन जाने के लिए वो पियानो सीखने का बहाना बनाती है। शुरू शुरू में ये रिश्ता भी बहुत रोमांचक लगता है उसे।
होटल के कमरे, चोरी छिपे मिलना।
हाँ, लेकिन धीरे धीरे इस रिश्ते में भी वही बोरियत और असलियत घुसने लगती है। लियोन भी आखिरकार स्वार्थी ही निकलता है।
मतलब ये रिश्ता भी उसके सपनों जैसा नहीं रहा?
नहीं। और दूसरी तरफ उसकी फिजूल खर्ची अब बिल्कुल बेकाबू हो चुकी है।
और लियोर अपना शिकंजा कस रहा होगा।
हाँ, लियोर अब कर्ज वापस मांगने लगता है। वो एमा को कानूनी दाव पेंच में फंसा देता है। एमा की दुनिया अब तेजी से बिखर रही है।
घर का सामान जब्त होने की नौबत आ जाती है।
हाँ, अधिकारी घर पर आने लगते हैं। एमा बुरी तरह घबरा जाती है।
वो मदद मांगती है लियोन से, रुडोल्फ से,
सबसे।
वो लियोन के पास जाती है पर वो कोई मदद नहीं करता, बल्कि डर जाता है। शहर के दूसरे लोगों से मदद मांगती है, कोई आगे नहीं आता।
आखिरी कोशिश।
आखिरी कोशिश में वो रुडोल्फ के पास जाती है, उसे लगता है शायद उनका पुराना प्यार उसे बचा लेगा।
लेकिन रुडोल्फ,
रुडोल्फ साफ मना कर देता है, बहुत ठंडेपन से। एमा का आखिरी सहारा, आखिरी भ्रम भी टूट जाता है।
अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा।
कोई रास्ता नहीं, वो पूरी तरह फंस चुकी है, बिल्कुल अकेली। हताश होकर वो होमे की फार्मेसी जाती है।
और वहां से जहर ले लेती है।
हाँ, वो होमे के सहायक को बातों में लगाकर आर्सेनिक यानी संख्या चुरा लेती है और खा लेती है।
और उसकी मौत।
क्या फ्लोबेर उसे भी मतलब यथार्थवादी ढंग से दिखाते हैं?
हाँ बिल्कुल, रोमानी उपन्यासों की तरह कोई सुकून भरी सुंदर मौत नहीं होती। एमा की मौत बहुत धीमी, दर्दनाक और भद्दी होती है।
फ्लोबेर कोई कसर नहीं छोड़ते असलियत दिखाने में।
बिल्कुल नहीं, चार्ल्स, होम, पादरी सब उसके आसपास होते हैं, पर सब बेबस होते हैं। और वो अंधा भिखारी, वो फिर आता है।
हाँ, वो प्रतीक की तरह है एमा के नैतिक पतन का।
हाँ, जैसे उसकी बिगड़ी हुई आत्मा का बाहरी रूप हो।
एमा की मौत के बाद चार्ल्स का क्या होता है?
चार्ल्स, वो तो जैसे जीता जागता मर जाता है। लियोर सारी जायदाद हड़प लेता है। फिर एक दिन चार्ल्स को एमा के वो प्रेम पत्र मिलते हैं,
रुडोल्फ और लियोन के।
हाँ, उसे एमा के धोखे का पूरा सच पता चलता है, लेकिन उसे गुस्सा नहीं आता,
बस दुख।
हाँ, एक ऐसा दुख जो उसकी रूह को कुचल देता है। कुछ समय बाद वो भी मर जाता है, बगीचे में बेंच पर बैठा हुआ, हाथ में एमा के बालों का एक गुच्छा लिए हुए।
बहुत दुखद। और उनकी बेटी बर्था?
उसका अंत शायद सबसे ज्यादा दुखद है। अनाथ बर्था को एक गरीब रिश्तेदार के यहाँ भेज दिया जाता है।
और उसे काम करना पड़ता है?
हाँ, गुजारे के लिए उसे एक कपास मिल में काम करने पर मजबूर होना पड़ता है।
और योनविल में कौन कामयाब होता है?
वही महाशय होमे, फार्मासिस्ट।
वही आडंबरी औसत आदमी।
हाँ, उसे आखिर में फ्रांस का बड़ा सम्मान लीजन ऑफ ऑनर मिलता है।
ये तो फ्लोबेर का सबसे तीखा व्यंग्य है। समाज किसको ही नाम देता है?
बिल्कुल, झूठे दिखावे को, औसतपन को, जबकि सच्ची भावनाएं, जिंदगी सब कुचल दी जाती हैं।
तो अगर हम उपन्यास के मुख्य विषयों को समेटें, सबसे पहले तो ये रोमानी भ्रमों का खतरा है ना?
हाँ बिल्कुल, एमा की पूरी त्रासदी इसी पर आधारित है कि वो जिंदगी को किताबों से सीखे गए आइडियाज से देखती है।
दूसरा, मध्यवर्गीय जिंदगी की वो घुटन, वो खालीपन।
हाँ, योनविल के लोग, उनकी छोटी सोच, उनका दिखावापन, फ्लॉबेर ने इस पर खूब लिखा है।
और फिर उस जमाने में औरतों की क्या स्थिति थी, एमा की कहानी ये भी दिखाती है।
सही कहा, उसके पास अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के रास्ते ही नहीं थे, घर में बंद।
तो उसने जो रास्ते चुने, फिजूल खर्ची, प्यार के रिश्ते, वो भी एक तरह का विद्रोह था, पर आत्मघाती।
हाँ, और ये उसे सीधे भौतिकवाद और कर्ज के जाल में ले गया। अपनी अंदरूनी कमी को वो चीजों से भरना चाहती थी।
और ल्यूर जैसे लोगों ने इसका फायदा उठाया, ये आज भी कितना सच लगता है ना?
बिल्कुल, चीजों से खुशी खरीदने का भ्रम और अपनी हैसियत से ज्यादा जीने का नतीजा, ये तो आज भी बहुत प्रासंगिक है।
और इन सब के मूल में है वो टकराव, भ्रम बनाम यथार्थ।
हाँ, एमा की पूरी जिंदगी इसी लड़ाई में बीतती है। शादी, प्यार, मौत, हर चीज में उसकी उम्मीदें असलियत से टकराकर टूटती हैं।
फ्लोबेर का यथार्थवाद, वो छोटी छोटी डिटेल्स पे ध्यान देना, वो एमा के सपनों को बार बार जमीन पर ले आता है।
शायद वो यही कह रहे हैं कि जिंदगी की सच्चाई से मुंह मोड़कर सिर्फ सपनों में जीना खतरनाक है।
इस उपन्यास को पढ़ना एक अजीब अनुभव है। एमा पे तरस भी आता है।
हाँ, उसकी बोरियत, उसकी तड़प महसूस होती है, पर गुस्सा भी आता है
उसके स्वार्थ पर, चार्ल्स के साथ उसके बर्ताव पर।
फ्लोबेर हमें किसी आसान जवाब तक नहीं पहुंचने देते, हमें सोचते रहने पर मजबूर करते हैं।
हम अपनी जिंदगी में कितने भ्रम पालते हैं, हमारी इच्छाएं कहां से आती हैं?
क्या समझौता कर लेना ही संतुष्टि है, या हमेशा कुछ और पाने की कोशिश करते रहना चाहिए?
ये उपन्यास हमें अपने अंदर झांकने पर मजबूर करता है,
और ये दिखाता है कि कैसे हमारे छोटे छोटे फैसले हमें एक बड़ी मुश्किल की तरफ ले जा सकते हैं।
तो संक्षेप में कह सकते हैं कि ये उपन्यास दिखाता है कि हकीकत से पूरी तरह मुंह मोड़कर सिर्फ कल्पनाओं के सहारे जीना कितना नुकसानदेह हो सकता है।
और इसकी अहमियत आज भी उतनी है, क्योंकि अपनी इच्छाओं, समाज की उम्मीदों और जिंदगी की असलियतों के बीच का संघर्ष, वो तो हमेशा रहेगा।
मैंडेटरी क्लोजिंग लाइन,
मैंडेटरी क्लोजिंग लाइन। ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।